फिर इसके बाद कायनात के कुछ और राज खोले जा रहे हैं। इतनी प्यारी आयतें हैं, आप इसको अब इमेजिन कीजिएगा। ये बात कहने के बाद कि उसी की तारीफ है इस दुनिया और आखिरत में, और उसी का हुक्म दुनिया में चलता है, और तुमने भी उसी की तरफ पलटना है। अब शऊर को बेदार किया जा रहा है। कुल अरअई तुम, आप फरमाइए, भला इतना तो सोचो, गौर तो फरमाइए, क्या इन जालल्लाहु अलैकुमुल्लैला सरमदा, अगर अल्लाह तला बना दे तुम पर रात हमेशा के लिए, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिदिया इन, कौन सा इलाह है अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे पास रोशनी लाए, अफला तस्माउन, क्या तुम नहीं सुनते। चलिए आप बताइए कि आपने इस पे गौर किया, अगर रात होती है और वो सुबह में ना ढले, कोई दिन ला सकता है, कोई ऐसा बड़ा व्हील कि जो पुश करे रात को और दिन आ जाए, रोशनी आ जाए, और कभी दर्द वाली कोई रात याद करे, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, दुखन है, नींद नहीं आ रही, वो रात ऐसे लगता है कांटों पे जा रही है, या कोई काम रुका हुआ है अगले दिन करना है और इंतज़ार ये कि सुबह हो, आपको वो रात रात नहीं लगती, ऐसे लगता है कि कई रातों की एक रात हो गई। कहा तुम तो इतने बेबस हो, चलो बुलाओ अपने सारे पीरों को, सारे शरीकों को बुलाओ और कहो इस रात को रोशनी में बदले। देखिए आज इंसानों ने रातों को रोशनियों में बदलने के लिए चिरागा तो कर लिए, ट्यूबलाइट्स, सर्च लाइट्स और क्या क्या कर लिया, लेकिन रात तो ना ले जा सके। कितनी साइंस की तरक्की है, आज मरकरी बल्ब तो ईजाद हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं को कर पा रहा कि रात को रोक ले। सोचिए कितनी इस्लाम की सच्चाई की दलील है ना। आप एथियस्ट लोगों को और जो इस्लाम से अल्लाह से दूर है उनको बेदार कर सकते हैं इन आयतों से, कि बताओ कि इस रात को रोशनी में बदलो। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के साथ मुनाजरा किया था ना, तो शौर को बेदार करने वाला था कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकाल लो। इसी तरह आप अपने दिल को चेक करें कि अल्लाह अगर रात ना लाए, दिन ना बदले, तो क्यामत तक रात ही रात रहेगी, डिप्रेशन होता। और यहाँ तो आप देखते हैं सर्दियों में जब रातें लंबी होती हैं लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग कहते हैं अंधेरों के दिन आ रहे हैं, खौफ आ रहा है, और जो ही अक्टूबर सितंबर शुरू होता है तो उसके बाद बीमार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में ऐसे लोगों की कसरत होती है कि उनको तो ज़िंदगी की अंधेर दिखने लगी। अफला तस्माउन, ये क्या सुना रहे हैं, या बड़ा प्यारा एक अंदाज़ देखिएगा कि रात की बात हुई है ना, तो कहा सुनो, क्योंकि कम अज़ कम रात के अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, सुन तो लोगे, सुना तो करो, तुम्हारे दिल की धड़कने बता रही हैं उनको, सुनो, हर धक धक के साथ अल्लाह अकबर की बातें आ रही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने गा रहा है तुम्हारा दिल, और जहाँ दिन की बात आएगी तो आखिर में अफला तुबसिरून। कुल अरअईतुम इन जालल्लाहु अलैकुमुन्नहार सरमदा, आप फरमाइए भला इतना तो सोचो, कभी सोचा तो करो, गौर तो फरमाओ, क्या इन जालल्लाहु अलैकुमुन्नहार सरमदा, अगर अल्लाह तला बना दे तुम्हारे लिए दिन को सरमद, सरमद कहते दायमी को, हमेशा रहने वाला, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन सा इलाह है अल्लाह के सिवा जो याती कुम बिलईल, ले आए तुम्हारे पास रात, याती कुम के साथ लईल की बा लगेगी, फिर मानी बनेगा लाना, और बा ना हो तो मानी होगा आना, कौन है जो लाए तुम्हारे पास रात के तस्कुनू नफी, जिसमें तुम आराम कर सको, अफला तुबसिरून, क्या फिर तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता, दिन की बात ही तो सुनने की बात है, देखने की बात कर दी। अब यहाँ आप गर्मियों के दिन सोच लें, 2 घंटे की भी रात रह जाती है ना, मैंने देखा है घरों में डबल कर्टन्स लगे हुए हैं, काले पर्दे हैं, वो कब खुलते हैं, जब गर्मियों में रातें ही ख़त्म हो गई, तो फिर उनको काले पर्दे डाल कर सोना पड़ता है ताकि अगले दिन काम कर सके। आंखें खोलो, गौर फरमाओ, हर चीज़ बोल बोल के बता रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हर चीज़ बता रही है कि कायनात असूलों की पाबंद है। यहाँ से सबक मिलते हैं, आप अपने आप को असूलों का पाबंद कर लें, दूसरे खुद ब खुद आपकी बात मान लेंगे। इस कायनात ने हमें बासूल बनना सिखाया, रात का सोना दिन का जागना बंदे को ताकत देता है। हदीस में आता है कि खबीसुन नफ्स है जो सुबह को देर तक सोता रहे, یعنی خود ہی نفس کو گندگی پہ مائل کر دیا، اور جس کے دن کا آغاز خباثت سے ہو باقی دن میں برکت کہاں ہوگی؟ تو جتنا ایک انسان اللہ کی نعمتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور کرے، دل جھکتا کہ نہیں جھکتا؟ آپ آج رات کریے گا غور، تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی جگہ میں جہاں سے باہر آپ دیکھ سکیں، تو غور کیجئے گا کہ اگر یہ اندھیرا ختم ہی نہ ہو، اللہ کہتے ہیں بتاؤ کوئی ہے جو اس کو روشنی میں بدل دے، پھر بھی اس کو چھوڑ کر دوسروں کے گن گاتے ہو، پھر دوسروں کی خوشی کا انتظار ہے، آپ ان آیتوں کو لے کر کسی بھی ڈسکو یا کسی بھی پارٹی اور کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ مست ہوئے میں ان کے پاس جائیں، اور وہاں جا کے ان آیتوں کو آپ اپنے دل میں دہرا کے دیکھیں، لگتا ہے لوگ اتنی بڑی ذات کو یہاں بیٹھ کے ناراض کر رہے ہیں، کیا بندہ اللہ کی بڑائی کو دل میں لے آئے تو گناہ کر سکتا ہے؟ اپنے لیے یہ عمل آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو میں کہوں کہ اللہ میں اتنی بڑی ذات کو ناراض کروں جو رات کو اور دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، میں اس کو ناراض کر کے کہاں رہوں گی؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور محض اپنی رحمت سے اس نے بنا لیا تمہارے لیے رات اور دن کو، یہ اس کی رحمت ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی، کیونکہ صرف خوشیاں زندگی میں آئیں گی تو پھول جائیں گے ہم، اور صرف غم آئیں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ کہا یہ زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے، جیسے رات اور دن دونوں ہیں، کیوں ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، کس میں؟ لیل میں، رات میں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے رات میں سکون لگ جاتا ہے نا، سارے ہی کام چھوڑنے ہی پڑتے ہیں، اسی طرح زندگی میں کبھی غم آتے ہیں نا، بیماریاں آتی ہیں، تب بھی پھر ہمیں سب بستر پہ لٹا دیتے ہیں، آپ آرام کریں، سکون آ جاتا ہے۔ بعض وقت بہت دولت ہوتی ہے، ہر وقت ہم مصروف، لوگوں کے منظور نظر بنے ہوئے ہیں، ذرا رات آئی غموں کی، دکھوں کی، مال کم ہوا تو سب چھٹ گئے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کون آیا ہوا شہر میں کون نہیں، دوسروں سے پتہ چلتا ہے، دعوتیں ہو جاتی ہیں، آپ کو کوئی بلاتا ہی نہیں، سکون آ جاتا ہے زندگی میں۔ لیکن اس کے برعکس والنہار، کیوں؟ ولتبتغوا من فضلہ، دن میں اس کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو، تم غور و فکر کرو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے۔ جب خوشیاں آتی ہیں نا زندگی میں، اس وقت بھی پھر بہت بھاگ دوڑ بڑھ جاتی ہے، جتنا پیسہ زیادہ آتا ہے نا اتنا آپ کا سرکل بڑھتا ہے، پہلے آپ شہر میں قریب قریب کہیں گئے ہوتے تھے دعوتوں میں، پارٹیوں میں، اب آپ کو دور دور سے بلاوے آنے لگتے ہیں، اور اس طرح ایک انسان جوں دور سے دور ہوتا جاتا ہے، کہ کسی کو دنیا کی نعمتیں نقصان نہیں دے سکتی، شرط کیا ہے؟ لعلکم تشکرون۔ پھر دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک کی طرف بات جا رہی ہے، محسوس کر رہے ہیں آیتوں کا ربط؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بھرپور طریقے سے بیان کرنے کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ انہیں آواز دے کر پکارے گا یا ان سے کہے گا، کیا؟ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم میرے شریک گمان کرتے تھے، یعنی وہ کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے؟ اب آپ دیکھیے جو لوگ ظاہری سطح سے یہ قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیتیں بار بار کیوں آتی ہیں، ابھی پیچھے بھی گزری ہے نا، لیکن اب بیچ میں اتنی توحید کی باتیں بیان کرنے کے بعد دوبارہ آ گئی، کیا مطلب؟ کہ کیا اللہ کی اتنی صفات کو سننے کے بعد تمہارے ویوز چینج ہوئے؟ کیا ابھی بھی کسی کو کرنی والا کہتے ہو اور ابھی کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، یا تمہاری نظریں میرے اوپر لگ گئیں؟ اگر لگ گئی ہیں تو مبارک ہو، تم نے راز پا لیا خوش رہنے کا، کوئی بھی نہیں ہے اب تمہاری زندگی میں، کفار کی بے بسی رسوائی کا منظر ہے، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، کہا چلو جو کرنا ہے کر لو پھر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک ایسا بے رحم وقت آنے والا ہے کہ اس دن کسی کو کسی کی کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے یعنی کھینچ کر نکالیں گے ہر امت سے ایک گواہ۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم ان امتیوں کو کہیں گے لے آؤ اپنی دلیل۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک حق تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج تو ساری بادشاہی اس کی ہے، آج تو ہر طرف اسی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو جائیں گے ان سے جو وہ گھڑ لیتے تھے۔ कोई उस दिन करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। अब ये गवाह कौन होगा? बास कहते हैं कि ये अंबिया कराम होंगे, और हर दौर में दावते तबलीग देने वाले मुबल्लिगीन, जिन्होंने लोगों को डराया, जिन्होंने लोगों को समझाया, गौर करने की दावत दी कि बताओ क्या कर रहे हो, क्या करके आए हो। पीछे भी बात होगी ना, माज़ा और जिब तुम में, रसूलों ने बात कही तो क्या कहा। उस दिन जाके उनकी भी गवाहियां ली जाएंगी, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, और किसी की कोई जुर्रत नहीं होगी इनकार की। लोग तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि रसूल आएंगे और हमारा हाथ पकड़ेंगे और जन्नत में ले जाएंगे, और अल्लाह रसूलों से कह रहे हैं आओ बताओ जरा इनके बारे में क्या कहते हो। कितना इंसान को तन्हा कर देने वाला वो दिन है। अब पीछे बात हुई थी मईशत की, बतीरत मईशतः, मैंने वहां जान के बात नहीं की क्योंकि अगली आयतों में एक पूरा किरदार बन रहा है। हम खुलासा करते हैं अगली आयतों का, फिर इंशाल्लाह इस पे बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और इन आयतों को वाकई पढ़ते हुए सुनते वक्त अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि अल्लाह हमें ऐसा मरीज़ ना बना दे कि हम एक ऐसा किरदार बन जाएं कि जिसको दिखाकर दूसरों को इबरत दिलाई जाए। यहाँ कहानी शुरू होती है कारून की। सूरत के आगाज़ में मैंने तذکرہ कर दिया था कि कारून का भी किस्सा आएगा। कौन था, क्या उसका मामला था, अगली चंद आयतों की रोशनी में खुलासा देखते हैं। पहले जहाँ तक इसका मजमून चलता है वहाँ तक तर्जमा लेके चलूँगी। फरमाया इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा, बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। फबगा अलैहिम, फिर इसने सरकशी की इन पर। यहाँ से कारून का नाम और उसका तذکرہ आ गया। ये कौन था? बाइबल में इसका नाम जो है वो कोरह, KORAH, कोरह। कहते हैं कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। हज़रत मूसा और कारून के वालिद आपस में सगे भाई थे। था बनी इसराइल से, लेकिन फिरौन का पुट्ठू बन चुका था। उन लोगों में से था जिनकी हमदर्दियां फिरौन ने खरीद ली थी बड़े ओहदे देकर। कहते हैं कि फिरौन का इतना मुकर्रब बन चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में फिरौन का साथ देने लग गया। दौलत अल्लाह ताला ने इसको बेशुमार दी थी, बेफिक्र ज़िंदगी गुजारता था। यानी जब कोई अपने मुल्क का शख्स गद्दार बनता है ना, उसको तारीख कभी माफ़ नहीं करती। बहुत सारे बुरे लोग गुजरे, ये नहीं कि उस दौर में सिर्फ फिरौन ही बुरा था, लेकिन यहाँ कारून का तذکرہ क्यों किया कि ये मुसलमान था, मूसा का रिश्तेदार था, आपसे हसद करता था। उसका दिल था कि मैं लीडर बनूं। कौम खस्ता खाल थी, कौम मुसीबतों में थी, परेशानियों में थी, उसको उनसे कोई सरोकार नहीं था। फिरौनी हुकूमत का एजेंट बन चुका था। इसका काम सिर्फ ये था कि बनी इसराइल को उस गुलामाना ज़िंदगी पर मुतमईन रखे, उनको तसलियां देता, नहीं, फिरौन बहुत अच्छा है, अंग्रेज़ को बुरा ना कहो, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर मुसलमानों की जड़ें काट रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसको मना करते थे इन बातों से। कहते हैं कि इसके इन कामों की वजह से फिरौन ने अपने महल में इसको जगह दी हुई थी। पूरी कौम तो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही थी, गले में तौक पड़े हुए थे, और ये बेफिक्र ऐश की ज़िंदगी बसर करता था। गद्दार लीडर ऐसे ही होते हैं, उनको कौम के फ़ायदों से कुछ फ़ायदा नहीं होता। और कहते हैं कि इसी कौम फरोशी की वजह से फिरौन ने अपने ख़जानों के मुँह इस पर खोल दिए, इसको अपनी सल्तनत का रुकन बना लिया। इसके पास कितनी दौलत थी, वह आते ना हो मिनल कुनूजी, और हमने इसको इतने खजाने दिए। कुनूज जो ये कंस की जमा है, खजाने कितने दिए, इन न मफातिहहू, कि उसकी चाबियां अपने ही बोझ से, लतनू बिल उसबती उलिल कुव्वा, झुका देती थी एक ताकतवर जमात को। यानी उसकी चाबियां कितनी थी, इस जुमले की कई मुख्तलिफ तफसीर की गई। बास कहते हैं लफ्ज़ तनू को देख लें तो इंशाल्लाह आसान होगा, नया लफ्ज़ है, नून वाओ हमज़ा इसका रूट है। लफ्ज़ जहाँ तहमिल होना चाहिए था उठाने के मानों में, लेकिन तनू आया। क्यों? कि तनू कहते हैं भारी होना और बोझ के मारे गिर पड़ना। कभी आपने किसी जानवर के ऊपर बहुत सारा वजन डाला देखा हो, तो जब चलता है तो कैसे होता, शेक होता है ना, हिलता है, शेकिंग के मानी इसमें आते हैं। उठाते वक्त हिलने और लुढ़कने की कैफियत की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने कारून को इतनी दौलत दी थी कि उसकी चाबियां जो थी वो जानवरों की एक बहुत बड़ी जमात बड़े मुश्किल से उठाती थी, एक मफहूम इसका ये है। तो फिर यहाँ उस्बा कौन हुई, ऊँटों की या जानवर जिसके ऊपर वो उठाए जाए उनकी तरफ इशारा है। और यहाँ जहन में रखिए कि उस दौर में चाबियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, आजकल तो बटन बन गया ना चाबियाँ, कीज, पिन कोड, उस दौर में बड़ी बड़ी चाबियाँ होती थी। खाना काबा की चाबी भी अगर आपने कभी पुरानी कहीं देखी हो या उसका तذکرہ सुना तो बहुत बड़ी होती, दरवाजे भी बड़े होते थे, चाबियाँ भी बड़ी होती थी। अब आप इमेजिन करें कि जिसकी चाबियाँ इतनी ज़्यादा थी तो फिर खजाने कितने होंगे, खजानों की तो बात ही नहीं है। यहाँ इसका एक और मफहूम भी है, ये वैसे तावील है, और वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी जमात से मुराद वो लोग हैं जो इसका हिसाब किताब लिखते थे, अकाउंट्स करते थे, कुछ भी मुराद है, लेकिन जहन में जो शख्स आ रहा है उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। जब इसकी इतनी दौलत देखी, इस काल लहू कौमुहू, उसकी कौम ने कहा उसको, ला तफरह, खुश ना हो, क्योंकि इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरेहीन, बेशक अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता इतराने वालों को। इतराता कैसे था, कहते हैं कि जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तालीम दे रहे होते लोगों को, तो ये अच्छे कपड़े पहनकर अपनी सवारी पे खूब जवाहरात और हीरों में लिपटा हुआ गुजरा करता था। अब लोग उसको कहते हैं, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि फ़ख्र करो, यहाँ लफ्ज़ है ना फरेहीन, तो फरह दो तीन किस्म की होती है ना, यानी ये फराह जो होता है ये इतराने के मानों में, बहुत खुद पसंद किस्म का था, बहुत इस सेल्फ कॉन्शियस था, मैं कैसा लग रहा हूँ। दो वजूहात से लोग पहनते हैं, एक होता है तहदीस नेमत, अल्लाह की नेमत है, कभी पहन लिया कभी नहीं पहना, कभी बहुत दिया कभी नहीं दिया, उनका अपना मूड होता है जो चाहें। लेकिन जो लोग इतराने के लिए पहनते हैं ना, वो घर से निकलते ही नहीं है जब तक कि उनके पास नया जोड़ा ना हो, क्योंकि शादी में हम जा रहे हैं, ये फ़र्क होता है। जो इंसान फरहा के लिए पहनेगा ना, वो कभी भी दूसरे लोगों की नज़रों में अपने आप को नीचा नहीं कर सकता, और जो अल्लाह के लिए करता है उसको शादी में अच्छे मिल गए पहन जाएगा, नहीं मिले तो वो उसमें भी चला जाएगा। ये जान के पहनता था और ख़ास तौर पे लोगों की तवज्जो लेने के लिए पहनता था। हदीस में आता है कि जिसने शोहरत का लिबास दुनिया में पहना, क़्यामत के दिन उसको खुजली का लिबास पहनाया जाएगा। दुनिया में भी कहते हैं ना देखो मुझे, तो क़्यामत के दिन जब खुजली कर रहा होगा तब भी लोग उसको देखेंगे। तो लोग उसको समझाते हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं है अपना आप दिखाने की, शो ना मारो, वक्त ही फी माता कल्लादारखिरता, और तलब करो इस माल व ज़र से जो दिया है तुझे अल्लाह ने आखिरत का घर। कि ये माल सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि तुम दूसरों का दिल चलाओ और अपने आप को दूसरों के सामने शो पीस बना के दिखाओ, आखिरत खरीदो, अल्लाह ने ये दुनिया में जो करेंसी दी है ये आखिरत की कीमत के लिए ली, वहाँ के घर खरीदो, वहाँ के जेवरात बनाओ, ये 4 दिन की दुनिया है, इससे वहाँ का काम लो, लेकिन याद रखो सारा आखिरत के लिए ना रखो। वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया का हिस्सा भी ना फरामोश करो। देखिए ये आयत इस्लाम का मिजाज बताने में बेहतरीन है कि माल से असल खरीदनी है आखिरत, लेकिन दुनिया की ज़रूरतें भी पूरी करो, ये नहीं कि सारा दे दो और भीख मांगने लगो। वाहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, और एहसान किया करो, यानी बंदों पर गरीबों पर, जिस तरह अल्लाह ने एहसान किया तुझ पर, यानी तुम भी अच्छे काम करो जैसे अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है। वला तबगिल फसाद फिल अर्दी, और ना फितना व फसाद की कोशिशें करो दुनिया में, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता मुफ्सिदीन को, फसादियों को। खैरख्वाह लोग थे, उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। قال انما اوتيته على علم عندي, कहने लगा मुझे दी गई है ये दौलत और सर्वत इस इल्म की वजह से जो मेरे पास है, मेरी स्किल्स हैं, खूब पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा अफसर हूँ, मेहनत की, आखिर पढ़ा पढ़ाया, अब दौलत कमाई है तो क्या बुरी बात हुई। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अवलम यालम अन अल्लाह कद अखलक मिन कब्लिही, क्या इस मगरूर को इतना भी इल्म नहीं कि अल्लाह ताला ने हलाक कर डाली इससे पहले भी, मिनल कुरूनी, कई कौमें, जो मन हुआ शद्द मिन्हु कुव्वतं व अक्सरु जमा, जो इससे कुव्वत में कहीं सख्त और दौलत जमा करने में कहीं ज्यादा थी। वला युसलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और नहीं दरियाफ्त किए जाएंगे मुजरिमों से इनके गुनाह। ये तो बीच की बातें हैं, इनको हम बाद में करेंगे, कहानी आगे पूरी करते हैं। लोगों ने समझाया लेकिन समझ ना आई। फ़खरज अला कौमिही फ़ी ज़ीनतिही, एक दिन निकल पड़ा अपनी कौम के सामने बड़ी जेबो जीनत के साथ, ठाठ बाट के साथ। قال الذين يريدون الحياة الدنيا, کہنے لگے وہ لوگ جو آرزو مند تھے دنیا کی زندگی کے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر بین ہوتے ہیں, ان کے منہ میں پانی بھر آیا اس کو دیکھ کر. کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کہیں گے ہائے کاش ہمیں بھی وہی کچھ مل جائے جو قارون کو دیا گیا ہے. انہ لذو حظ عظیم, واقعی وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے. لوگ بولتے ہیں ایسے جملے. وقال الذین اوتوا العلم, آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے علم والے, تو علم والے بولے ویلکم, خرابی ہو تم میں, یعنی تمہاری عقل پہ افسوس ہو رہا ہے. ثواب اللہ خیر, اللہ کا ثواب بہتر, لمن آمن وعمل صالحا, اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے. ہاں لیکن یہ بات ہے بڑی مشکل. ولا یلقاها الا الصابرون, نہیں القا کی جاتی یہ بات مگر صبر والوں کو. یعنی یہ بات کہ دنیا کی پمپ اینڈ شو کچھ نہیں, آخرت کا اجر بڑا ہے, یہ بات تھوڑے ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے, سب کو نہیں آتی. قارون کا انجام کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبداره الارض, تو ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں. فما کان له من فیتی ینصرونه, پھر نہ تھی کوئی جماعت کے جو اس کی مدد کرتی. من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں. اور وما کان من المنتصرین, اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا. لوگوں کا حال کیا ہوا؟ بس وہ الذین تمنوا مکانہ, اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل تک اس کے مرتبے کی آرزو کر رہے تھے بلمس, کل کو. یقولون, وہ کہتے ہوئے. وی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اب پتہ چلا کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے. من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. ویقدر, اور تنگ کرتا ہے. لولا من اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتا. وہی کان نہ ہو, اوہو اب پتہ چلا کہ لا یفلح الکافرون, کافر مراد کو نہیں پاتے. یہاں پہ قارون کا قصہ ترجمے کے اعتبار سے پورا ہوتا ہے, پھر آگے اس کے کچھ افیکٹس ہمیں دکھائے جائیں گے. بہت ہی زیادہ غور و فکر اور تدبر کی آیات ہیں. ہم یہ آخری آیت کی تلاوت سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ دیکھیں گے.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون